कई बार लोग पूछते हैं कि एकाशी क्यों रखनी चाहिए, है ना? और बहुत सारे लोग बात करते हैं कि पाप क्या चीज़ है। हाँ, तो हमारा एक ग्रंथ है पद्म पुराण, 18 मुख्य पुराण है, उसमें से एक है पद्म पुराण। तो मैं पढ़ रहा था तो उसमें पाप का स्वरूप बताया गया है कि पाप का स्वरूप क्या होता है ना? तो मैंने सोचा आप लोगों को बताते हुए लिख के लाया हूँ पूरा डिटेल सो व्यास देव जी बता रहे हैं पद्म पुराण में कि भगवान ने जब सृष्टि की तो सृष्टि को नियंत्रण में रखने के लिए भगवान ने एक मूर्तिमान पाप भी बनाया। कि पाप वो व्यक्ति है जो इस सृष्टि के सारे लोगों को काबू में रखता है। हाँ, हर व्यक्ति मतलब पाप करने के लिए मजबूर जैसे लगता है ना। और अर्जुन ने भगवद गीता में पूछा भी था कि मैं करना नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी मुझसे पाप क्यों हो रहा है, क्यों मैं पाप करने में जो है वो लिप्त हो रहा हूँ। तो भगवान ने बोला कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, है ना, कि काम वासना जो है और क्रोध, हाँ, इससे ये जो दोनों वस्तुएं हैं काम और क्रोध, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और इसके प्रभाव में व्यक्ति जो जीव है वो ऐसे काम करने में लिप्त हो जाता है, मजबूर हो जाता है, जैसे कोई जबरन हाथ पकड़ के करवा रहा हो, यद्यपि उसकी इच्छा नहीं भी होती, बाद में सोचता हाय मैंने क्या कर दिया, है ना? जैसे आप टीवी न्यूज़पेपर में आप देखते हो पढ़ते हो कि कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति है और आपस में उनकी गाड़ियां टकरा गई तो एक दूसरे का खून भी कर देते हैं, दुश्मन नहीं होते वो, जानते ही नहीं, लेकिन एक सेकंड में इतना वेग आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है कि जो भी पास में हथियार है कुछ भी है उठा के मार देगा सामने वाले। इसलिए तो बोलते हैं कि अपने पास में कोई भी खतरनाक वस्तु नहीं रखनी चाहिए, बंदूक वगैरह आजकल तो फैशन हो गया, बंदूक लेके आओ, बंदूक रखना चाहिए। हाँ, हम एक गांव में गए थे पीछे, काफ़ी देर हो गई, कई महीने हो गए वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पर लोग जो हैं वो ऐसे ही दुनाली बंदूक होती है ना बड़ी वाली वो, और वो कट्टे पिस्टल लेके ऐसे घूम रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है हमारी सुरक्षा भी हो रही है और एक प्रेस्टीज, एक मतलब शान लगती है कि हाँ देखो मेरे पास भी बंदूक है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि एकदम से अगर कुछ गुस्सा आ गया और उस समय गुस्से में बंदे को लगता है यार ना खुद मर जाऊं या सामने वाले को मार दूं, सुसाइड ऐसे ही तो होते हैं, एक क्षण होता है, वो क्षण बीत गया तो सब ठीक है, वो क्षण के अंदर अगर सामने किसी ने उसको रोका नहीं या अपने आप से वो रुका नहीं तो लोग अपनी जान ले लेते हैं, एक सेकंड का काम होता है, वो सेकंड बीता सब ठीक हो जाता है फिर। तो इसीलिए कभी भी अपने पास ऐसे गलत जो चीज़ें हैं खतरनाक चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, कुछ पता नहीं चलता टाइम का, नहीं? सो भगवान ने पाप बनाया और अलग अलग जगह से अलग अलग सामग्री ली पाप को बनाने के लिए। तो उन्होंने कैसे पाप को बनाया कि जो पाप जो है, जो पाप नामक व्यक्ति है उसका जो सिर है, वो सिर किसका बना हुआ है? उसका सिर बना हुआ है ब्रह्म हत्या का। ब्राह्मण हत्या जो है वो पाप का सिर है और ब्रह्म हत्या ऐसी चीज है कि कोई कितना भी बड़ा कितना भी यशस्वी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर ब्रह्म हत्या कर दी तो सब नष्ट हो जाएगा। शिवजी भी भागना पड़ा उनको भी ब्रह्म हत्या के चक्कर में, इंद्र भागता रहा, हाँ ब्रह्म हत्या की उसने, तो इंद्र भी भाग रहा था अपनी रक्षा करने के लिए। तो फिर उसने जो ब्रह्म हत्या का, प्लीज अपने मोबाइल फोन प्लीज स्विच ऑफ कर लीजिए, हाँ। तो इंद्र ने अपने ब्रह्म हत्या के पाप को 5 भागों में बांटा और उसने अलग अलग जगह पर वो 5 पाप दिए, हाँ। तो उससे वो अपने पापों को देने के कारण इंद्र की जीवन रक्षा हो सकी, नहीं तो इंद्र का खात्मा निश्चित था, हाँ। सो उन उस जो ब्रह्म हत्या का जो पाप है उसका 1/5 हिस्सा, 20% जो हिस्सा है उसने स्त्रियों को दिया, हाँ, जिसके कारण जो स्त्रियों को मासिक धर्म होता है वो इंद्र के वो ब्रह्म हत्या के 1/5 में जो परिणाम है उसका फल है ये, हाँ, इतना ताकतवर है ये, हाँ। जो ये रेगिस्तान वगैरह हैं ये भी जो धरती पर रेगिस्तान है ये उस 1/5 हिस्से का परिणाम है ना, जो वृक्षों से रस गिरता है बिल्कुल बेकार रस होता है, किसी काम का नहीं होता, वो भी इंद्र के। तो इस तरह से उसने 5 जगह पे वो 5 बांटे तो जाके उसकी जान बची इंद्र की, इतना भयंकर होता है। तो ये भी समझना चाहिए कि जो ब्राह्मण की हम बात करते हैं तो ब्राह्मण मतलब कर्म और स्वभाव से ब्राह्मण, जाति से ब्राह्मण नहीं है ना। सो जो पाप है, पाप रूपी व्यक्ति, उसका सिर ब्रह्म हत्या का बना हुआ है और उसकी आंखें शराब की बनी हुई है, इसलिए जो शराब पीता है उसकी आंखें गोल गोल घूमती है ना, कुछ होश नहीं रहता उसको, हाँ। जो उसका चेहरा है वो उसका चेहरा स्वर्ण चोरी से बना हुआ है, हाँ। जो सोने की चोरी करता है तो वो पाप का चेहरा है वो, और जो कान है पाप के वो गुरु जो पत्नी है, हाँ, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार जो है वो पाप के कान है, हाँ। और जो नाक है पाप की, स्त्री हत्या उसकी नाक है, हाँ। वह गो हत्या उसकी बाजुएं हैं, हाँ। फिर और किसी ने आपको पैसा दिया और पैसा हड़प लिया, बहुत से लोग करते हैं, है ना, तो वो पाप का गला है, जो गला है ना, हाँ। और जो पाप का कंठ क्या है, गर्भपात जो करते हैं स्त्रियां वो पाप का कंठ है वो। जो व्यभिचार है पर स्त्रियां पर पुरुष गमन वो पाप का हृदय है, हार्ट है वो पाप का। और आप कोई अपने आप को आपका दोस्त समझे, आप पे विश्वास किया तो मित्र की, वो उस मित्र की हत्या कर दी तो वो जो है वो पाप का पेट है, उधर है पाप का। और किसी ने आपकी शरण ली और उसकी हत्या कर दी शरणागत की तो वो नाभि है पाप की, हाँ। फिर क्या है, और जो गुरु को अगर दुखी कर दिया, अगर गुरु को दुखी किया तो वो जांग है पाप की, हाँ। और जो लिंग है, हाँ, वो अपनी पुत्री को बेचना वो पाप का लिंग है, हाँ। आप बोलोगे बेटी को कोई बेचता है, बहुत दुनिया बैठी है बेटी को बेचने में। पीछे अखबार में आया था कि अभी नोटबंदी के चक्कर में थोड़ा कम हो गया है, लोगों के पास कैश ही नहीं है देने के लिए, हाँ। सो लेकिन बहुत सी दुनिया है जो बेटी को बेचती है, बेटी का धन खाती है, बेटी काम कर रही है वो पैसा खा रहे हैं, बेटी पराया धन है बेटी का एक भी पैसा अपने पास नहीं रख सकते। बहुत बड़ा मतलब उसका फल भोगना पड़ता है उसका, बहुत ज़्यादा, है ना। जो अब जो बेटी है उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि किसी और की संपत्ति है और उचित समय आने पर उसको दान करना है किसी और को। इसीलिए तो कन्यादान बोलते हैं, नहीं बोलते, है ना। तो किसी और की संपत्ति को जो आपकी सुरक्षा में भगवान ने दी है, उसका धन खाना या उसको बेचना बहुत ही खराब बात है ना। और आपको किसी ने गुप्त बात बताई, आगे जाके बोल दी, तो वो पाप की गुदा है वो। और दुनिया भर के जितने दुर्भाग्य हैं वो पाप के शरीर के बाल हैं वो। बड़ा विशाल शरीर है पाप का, बहुत विशाल शरीर है, एकदम जलती हुई आंखें हैं उसकी, लाल रंग के बाल हैं। तो ये पाप का स्वरूप है, ये पाप का। तो पूरा संसार त्राही त्राही कर रहा था पाप से, सब लोग पाप के जो है प्रभाव में आकर बहुत दुख पा रहे थे। तो एक बार भगवान ने बोला, चलो यमराज को मिल के आता हूँ। तो गए यमराज को मिलने के लिए, तो बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो भगवान ने पूछा, क्या शोर क्या मच रहा है, ऐसे अभी आप शोर मचा रहे थे ना। तो भगवान ने पूछा यमराज से, क्या शोर मचा हुआ है यहाँ पर। तो यमराज ने बोला कि भगवान, ये सारे पापी जीव हैं, सारे मतलब दुख पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, चलो दिखाओ जरा क्या हो रहा है। तो भगवान ने वो जीवों को देखा, कोई कढ़ाई में तल रहा है, कोई कंटीली जमीन पर उसको घसीट रहे हैं यमदूत, कोई बर्फ में जमा हुआ है। ये लोग जाते हैं ना कश्मीर वगैरह बर्फ देखने के लिए, अभी वहाँ पे नंगा खड़ा करके उनको बर्फ में 20 घंटे दौड़ाया जाए उनको, तो अपने आप सब जो बर्फ देखने की इच्छा खत्म हो जाएगी और ढूंढेंगे भैया रजाई कहाँ है, आग कहाँ है। सो उनको देख के भगवान के हृदय में बहुत दया आ गई, कितने दुख पा रहे हैं। तो इतनी दया आ गई कि वो जो दया है वो भगवान के हृदय से प्रकट हो गई। तो वो जो करुणा है भगवान की, उसका नाम है एकादशी, ठीक है। सो ये है एकादशी, के एकादशी लोग पूछते हैं कहाँ से आई। तो पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि जो भगवान की, इतने द्रवित हो गए भगवान देखकर कष्टों को, तो वो जो करुणा है उन जीवों को कल्याण, जीवों का कल्याण करने के लिए, उनको कष्टों से बचाने के लिए, वो जो करुणा भगवान का, करुणा का मूर्तिमान रूप जो है वो एकादशी है, ठीक है। अब एकादशी आ गई तो जो एकादशी के दर्शन कर रहा है वो मुक्त हो जा रहा है वो। तो अब कौन टेंशन में आ गया, यमराज जी को टेंशन में आया। तो पाप टेंशन में आ गया, पाप ने कहा सारे ही मतलब काम खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मतलब क्या करूं, किसके सिर पे जाके बैठूंगा मैं, मुझे भी तो कुछ जगह चाहिए। ये मतलब 15 दिन में ही आ रही है काशी, लेकिन जितने पाप इकट्ठे किए खत्म, जितने इकट्ठे किए खत्म, तो मतलब क्या क्या करूं, मेरे तो जीवन बचाना मुश्किल हो गया। तो पाप जो है भगवान के सामने है, भगवान मेरी भी रक्षा करो, मेरा भी घर चलने दो, मैं कहाँ जाऊं क्या करूं। तो भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम। एक काशी आती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, कहां पे जाके छुपू? तो भगवान ने कहा आप एकादशी के दिन अन्न में छुप जाओ जाके, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए, बकवास है, कहां पे चावल की बात नहीं कर रहे हैं। एकादशी को अन्न नहीं खाना, चाहे वो चावल है, चाहे गेहूं है, चाहे दालें हैं, है ना। तो इसीलिए एकादशी को कहा जाता है कि एकादशी को अन्न मत खाओ। क्यों मत खाओ? क्योंकि साक्षात पाप ने एकादशी के दिन अन्न में शरण लेके रखी है, है ना। सो कुछ भी करना, एकादशी के दिन अन्न मत खाना, ठीक है। तो व्यासदेव जी ने आगे बताया कि देखो आप सोच समझ के रखा है एकादशी या नहीं रखा फर्क नहीं पड़ता। अनजाने में भी अगर एकादशी रख लिया तो बहुत फायदा होने वाला है आपको। तो ये व्यासदेव जी बता रहे थे जैमिनी ऋषि को। तो उन्होंने बोला कैसे, कुछ क्या कभी ऐसी कुछ बात हुई है क्या पहले? तो उन्होंने बताया हाँ ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने बोला एक राजा था, उसका नाम था कोचरश राजा और उसकी पत्नी थी सुप्रज्ञा। तो उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण उनके महल में गया, तो एकादशी का दिन था, तो उसने देखा दोनों पति पत्नी जो हैं वो जोर जोर से क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और डांस कर रहे हैं दोनों, नृत्य कर रहे हैं, और उन्होंने एकादशी का व्रत रखा हुआ है। तो ब्राह्मण बड़ा हैरान हो गया, बोल रहे हैं कि आपके पूरे शरीर में दिव्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मैं थक गया तपस्या करते करते, आखिर आपके शरीर में इतने दिव्य लक्षण कैसे आ गए? और जो उसकी राजा की पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था?
सुप्रज्ञा।
चलो सुन रहे हो आप, बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए ना, कई बार जैसे घोड़ा या खड़े खड़े सो जाता है ना, उसको हमारी तरह लेट के सोने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से लेक्चर में जब डिवोटीज आते हैं ना, तो इतने चमत्कारी अद्भुत डिवोटीज हैं, आके खोल के कहीं और परलोक गमन कर जाते हैं, फिर जैसे ही लास्ट में लेक्चर खत्म होके बोलते हैं हरी बोल, तो एकदम से जाग जाते हैं। और आप उनको देखो तो लगेगा बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन वो शरीर यही होता है, आत्मा कहीं और होती है। तो ब्राह्मण ने उनसे पूछा रानी से कि आपको तो अपने पिछले जन्मों का पता है, तो जो सुप्रज्ञा है उसके पास इतनी शक्ति थी, उसको अपने पिछले जन्मों का पता था उसको। हाँ, तो ब्राह्मण ने कहा आप मुझे बताओ आप पिछले जन्म में कौन थे, तो आप ये गति को कैसे प्राप्त हो गया? तो उस सुप्रज्ञा ने कहा कि मैं पिछले जन्म में वैश्या थी मैं, और जो राजा ये कौन था? तो उन्होंने बोला जो ये राजा है जो मेरे पति है ये नित्योदया नामक एक शूद्र था, हाँ, और डाकू का काम करता था, हाँ, पर स्त्री गमन, शराब पीना, लूटना, लोगों को मार देना, ये मतलब इसमें इसको बहुत आनंद आता था, इसको हाँ बहुत अच्छा लगता था इसको। So, एक बार इसने जो नित्योदया नामक जो ये डाकू था शूद्र, इसने एक बार वैश्या को देखा और वैश्या ने इसको देखा, तो बहुत ही सुंदर था देखने में, जैसे सांप होता है ना, सांप आप देखो बहुत ही चमकीली उसकी बॉडी होती है, हाँ बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो सुंदर सांप को कोई गले में हार समझ के डाल लेगा तो क्या होगा, मृत्यु प्राप्त होगी, है ना। तो देखने में बहुत सुंदर था, तो दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। हाँ जैसे अजामिल था ना, अजामिल भी एक वैश्या से आकर्षित हो गया, तो अपने घर बार छोड़ के वैश्या के साथ रहना शुरू कर दिया अजामिल ने। तो ऐसे ही जो नित्योदया नामक जो शूद्र था, इसने वैश्या के साथ रहना शुरू कर दिया। बहुत टाइम साथ रहते रहे। एक दिन क्या हुआ, दोनों में बहुत प्रेम हो गया। एक दिन वैश्या को बहुत तेज बुखार हो गया, इतना तेज बुखार हुआ कि ना कुछ खाया गया और ना कुछ पिया गया उससे। और उस दिन क्या था, उस दिन एकादशी थी। और इतना प्रेम था नित्योदया जो शूद्र था उसको, वैश्या से इतना प्रेम था, उसने बोला तू नहीं खा रही तो मैं भी नहीं खाऊंगा। जैसे आजकल ये अभी ट्रेंड बन गया है ना, ये क्या करवा चौथ, हाँ बना कि नहीं बना ट्रेंड, सही से बताना कौन कौन जो ये प्रभु हैं, कौन कौन से प्रभु करवा चौथ का व्रत रखते हो, रखते हो नहीं रखते, सही से ही बोलना। नहीं बहुत सारे ये आजकल नया फैशन है ना कि देखो मेरी पत्नी मेरे लिए व्रत रख रही है, मैं इसके लिए रखूंगा। तो ना हस्बैंड खाता है ना वाइफ खाती है, है ना। सो ऐसे ही जो नित्योदया शूद्र था, तो जितने भी ये हस्बैंड रखते करवा चौथ का वो सारे वो नित्योदया शूद्र जैसे। कोई कह नहीं रहा रखने के लिए जबरदस्ती। शारीरिक आकर्षण के कारण भाई उसने रखा है मैं भी रखूंगा, चलो भैया रख लो। एकादशी का व्रत नहीं रखते, करवा चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया। सो अब उसने नहीं खाया तो इसने भी नहीं खाया। सुबह होते होते तक वैश्या राम नाम सत्य हो गया, है ना। उसको बड़ा झटका लगा शूद्र को, क्या नाम है उसका, नित्योदया। तो उसने सुसाइड कर लिया उसने। अभी उन्होंने क्या, उन्होंने काशी का व्रत रखा, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं रखा, लेकिन भगवान ने स्वीकार कर लिया कि चलो भैया। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, ऐसे हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं ऐसे प्रसंगों से कि बाय चांस जो है किसी को एक विशेष दिन कुछ ना खाने को मिला ना पीने को मिला, और उस दिन बाय चांस एकादशी थी या कोई भगवान का पर्व था जैसे जन्माष्टमी इत्यादि, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे लिए, हालांकि रखा नहीं है, लेकिन भगवान मतलब मौका ढूंढ रहे हैं, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि चल भाई कुछ कर दे ये, इसको बस कृपा देनी है इसको, है ना। तो भगवान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि चलो एक आशय रखी है। अब दोनों अच्छे लोग थे कि खराब थे, अच्छे थे खराब थे, सोच के जवाब देना, अच्छे थे खराब थे, खराब थे, इसमें क्या इतना क्या सोच रहे। तो खराब थे वो, तो लेने के लिए यमदूत आ गए, घसीटते हुए उनको ले गए। तो यमराज ने पूरा दरबार सजा हुआ था, यमराज बैठे थे रौद्र रूप के अंदर। तो गरुड़ पुराण में लिखा है यमराज जी के दो रूप है और दो उनके वो एंट्रेंस है, दो एग्जिट है जो जहां पे रहते हैं ना यमराज जी। तो दो दरवाजे हैं अंदर घुसने के लिए और दो दरवाजे हैं बाहर निकलने के लिए। तो वो जिस दरवाजे से घुसे वहां पे तो यमराज जी अपने रौद्र रूप में बैठे हुए थे, सामने बैठे थे। तो यमराज जी ने अपने अकाउंटेंट को बोला, क्या नाम है उसका? चित्रगुप्ता, बताओ क्या किया इन्होंने। तो चित्रगुप्त ने खोली चिट्ठी, कई लंबा कई पेजों में लिखी हुई थी उनकी कथाएं दोनों की। तो उन्होंने कहा साहब लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन उन सब पे कांटा लग गया। इन्होंने मरते मरते एकादशी का व्रत रख लिया इन्होंने। तो जितने इनके पाप इन्होंने किए थे वो सब पे घाटा लग गया। जैसे ही यमराज जी ने सुना उनका रौद्र रूप सौम्य रूप बन गया, पैरों में गिर पड़े दोनों के, उनको बिठाया आसन पे और स्वादिष्ट अमृत के समान टेस्टी शाही पनीर, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पनीर के नान सब खिलाए उनको बिठाए। हाँ और क्या खिलाया? सो बहुत स्वादिष्ट पेय पदार्थ उनको दिए एकदम अमृत के समान। देखो पद्म पुराण में शाही पनीर नहीं लिखा हुआ है, वो तो मैंने अंदाजा लगा लेकिन उसमें लिखा है कि बहुत स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए उनको और उनका जो स्वाद था बिल्कुल अमृत के समान था उसका स्वाद, है ना। तो वो खिलाया, उनको बिठाया, उनकी पूजा की उनकी, तो यहाँ पर उनका जन्म हो गया। तो सुप्रज्ञा ने बोला उस ब्राह्मण को, देखो हमने तो अनजाने में रखा था फिर भी ये फल मिल गया, अगर सोच समझ कर रखेंगे, अगर सोच समझ कर रखेंगे तो सोच भी नहीं सकते अचिंत्य है कि क्या फल मिलेगा, है ना। एक आपने वो कथा सुनी होगी ना कि एक आदमी था बहुत ही लंपट, सारे लंपटों की बात चलती है, लंपट धूर्त डाकू टाइप आदमी था एक। तो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था तो उसके हाथ में फूल थे, प्रेमिका को देने जा रहा था, बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, लेट हो गया था वो एक्चुअली में, दौड़ रहा था, ठोकर लगी, धड़ाम से मुंह के बल गिरा तो जो हाथों में फूल थे वो फूल भगवान के विग्रह पे गिर गए वहां पर, और नीचे गिरा, सिर टकराया, राम नाम सत्य हो गया उसका। भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया उसको कि चल भैया इसने फूल चढ़ाए हैं। अब मर गया तो पकड़ के कहां ले गए? उन्हीं वही वाले यमराज जी के पास। तो यमराज जी ने फिर उसका कच्चा चिट्ठा देखा, उसकी भी लिस्ट बड़ी लंबी थी, सिर्फ एक ही अच्छा काम लिखा था, क्या था? भगवान को फूल चढ़ा दिए। उसको नहीं पता कि मैंने भगवान को फूल चढ़ाए हैं, उसको उसको नहीं पता। तो यमराज जी ने उसको बोला कि देख भाई बड़ी लंबी लिस्ट है तेरी, एक बार नरक में डाल दिया तो भैया काम तेरा फंस जाएगा, लेकिन तूने एक अच्छा काम किया हुआ है। उसने कहा यार अच्छा काम, मैंने अपने होशोवास में तो कभी अच्छा काम नहीं किया, ये अच्छा काम कहां से आ गया? तो यमराज जी ने कहा तूने वो फूल चढ़ाए थे ना मरते मरते, उसने कहा अच्छा वो गिरा था, वो फूल वहां पे गिर गए थे, अच्छा तो वो अच्छा काम हो गया। तो उन्होंने यमराज जी ने कहा देख भैया ये अच्छे काम का ना तेरे को फल मिलेगा। तो क्या फल है जी उसका? तो उसने कहा भैया ये अच्छे काम का फल है कि तेरे को इंद्र का जो इंद्र का पर्सनल बगीचा है उसका क्या नाम है? स्वर्ग, स्वर्ग लोक है ना, स्वर्ग लोक में स्वर्ग लोक का राजा कौन है? इंद्र। तो जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति है ना, उसका अपना एक पर्सनल बगीचा है, उसका क्या नाम है? देखो आपको वो पता है, मुगल गार्डन। अभी फरवरी में खुलेगा वो, है ना, वहां पे कई गुलाब के फूलों की क्यारियां हैं वहां पर, है ना। लेकिन प्रॉब्लम है, आप घास पे नहीं चल सकते वहां पर। आप में से गए हो लोग कभी मुगल गार्डन? अच्छा, एक ही गया है बस। हाँ, आप में से लाल किला कितने लोग गए? क्या आज? और ले, नुकसान हो गया आपका। चलो अभी बताऊंगा नुकसान कैसे हुआ। तो स्वर्ग लोक का जो राजा इंद्र है, उसका अपना एक पर्सनल निजी गार्डन है, उसका उसका नाम है नंदन कानन। सुना नाम कभी? नंदन कानन, उसका अपना पर्सनल बगीचा है जहां पे पारिजात पुष्प लगा हुआ है, जो भगवान ने कृष्ण ने चुराया नहीं था, छीन के चुराया, क्या था, छीन के ले गए थे सत्यभामा को देने के लिए। कुछ याद भी आ रहा है यहाँ? मतलब ये सब परीलोक की कथाएं लग रही है आपको। कभी सुना आपने कि भगवान कृष्ण ने परिजात पुष्प चुराया था, छीना था उसके महल से सत्यभामा के लिए, फिर क्या हुआ, आपस में लड़ाई हो गई? हाँ, क्या चीज? हाँ, वो इंद्र ने कहा कहाँ लेके जा रहे हो मेरा फूल? भगवान ने कहा वो कात में रह के बात कर, जानता नहीं है मैं कौन हूँ। एक झटका मारा, साइड पे गिर गया इंद्र। भगवान ने फूल का पूरा वो पौधा लिया और चले गए द्वारका आराम से। हाँ, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, भगवान के सामने क्या बिसात है उसकी, नहीं? तो यमराज ने बोला कि देखो भैया, तुमने ये फूल चढ़ाए थे तो उसका फल है कि तुम्हें एक घंटा यमराज के जो पर्सनल गार्डन है, क्या नाम है उसका? नंदन कानन है ना, बोला तुम्हें वहां पे फ्री टिकट मिल रही है एक घंटे की, घूम के आ जाना, उसके बाद तुम्हारा नंबर वहां पर है, फिर नरक में, फिर वहां पे देखूंगा तुम्हें मैं। तो उसने कहा ठीक है साहब। तो उसको वहां पर ले गए। वो थोड़ा सा समझदार था वो। वहां पहुंचते ही उसने क्या किया? सारे फूल तोड़ने शुरू कर दिए। फूल तोड़ते स्वाहा, फूल तोड़े वहां, फूल देखे तोड़े। इंद्र ने कहा भाई क्या पागल हो गया क्या, सारा बाग उजाड़ेगा क्या? उसने कहा भैया तू रोक सकता, रोक ले। रोक सकता नहीं वो इंद्र उसको। हाँ, तो उसने हाथ पैर जोड़े, भैया रुक जा। उसने सोचा कि कुछ फूल एकदम घटिया बेकार से, कुछ फूल अनजाने में अगर भगवान को चढ़ा दिए तो ये फल मिल गया, अगर मैं भक्ति के साथ जानबूझकर अगर भगवान को फूल चढ़ाऊंगा तो पता नहीं क्या फल मिलने वाला है। तो क्योंकि उसने जानबूझ के सोच समझकर भक्ति भाव से भगवान को वो फूल चढ़ाए, तो क्या वो नरक गया? नरक नहीं गया, सारे पाप उसके खत्म हो गए और सीधा एक घंटे बाद भगवत धाम एरोप्लेन से पहुंच गए, है ना। सो अगर जानबूझ के नहीं भी किया तो भी इतना फल है, अगर आपने सोच समझकर भगवान की भक्ति की, अगर आपने सोच समझकर एक काशी रखी, आप सोच भी नहीं सकते कि उसका क्या फल मिलने वाला है। अचिंत्य फल मिलेगा उसका। आप सुबह भगवान की आरती करो, हाँ, अगरबत्ती दिया पुष्प इत्यादि भक्ति भाव से भगवान को ऑफर करो। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर किसी अनपढ़ एक बिना समझ वाले व्यक्ति, एक कनिष्ठ भक्त जो होता है, उसने अगर भगवान के मंदिर में एक बार घंटी भी बजा दी, तो उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है, करोड़ों स्कूल बनवाने से, करोड़ों अस्पताल, धर्मशालाएं, कुएं बनवाने से भी ज्यादा फल है उसका। क्योंकि इससे आप सीधे परम भगवान को प्रसन्न कर रहे हो, परम भगवान को संतुष्ट कर रहे हो। इसीलिए पद्म पुराण में लिखा है कि कृष्णा परम भगवान एकादशी परम व्रत, और एकादशी को अन्न खाना परम पाप। ठीक है, सो आप प्लीज गंभीरता से इस बात पर विचार कीजिए, जिन्होंने इस एकादशी नहीं रख पाए किसी कारण से, चलो मारो गोली। आप एकादशियां और भी आने वाली हैं, आप भगवान से यही प्रार्थना करना कि कम से कम अगली एकादशी तक जिंदा रहें हम, ताकि आप एकादशी रख सको। एकादशी बहुत ही महान व्रत है, और आपने एक भी एकादशी, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही रखना, ऐसा मत करना एक रख ली चलो काम खत्म, ठीक है। सो आप प्लीज एकादशी के व्रत रखिए, एकादशी को अन्न मत खाइए, और भगवान की जितनी आप भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, हर रोज आप भगवान की आरती करेंगे, भगवान को अगरबत्ती पुष्प दिया दिखाएंगे, कुछ अंदाजा नहीं है। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि लाओ मैं बताता हूं आपको क्या फायदा होगा, कोई नहीं बता सकता, व्यास देव जी भी नहीं बता सकते। अचिंत्य है कितना फायदा उसका होने वाला है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ अगले एकादशी को कितने लोग व्रत रखेंगे? अभी भी पूरे हाथ नहीं खड़े। सो आप सब प्लीज एकादशी रखिए, एकादशी व्रत का पालन करना बहुत ही आप लोगों के लिए आवश्यक है। चाहे आप उसका, ऐसा नहीं है कि आप मौका मिलते ही बोलना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं है कि जैसे सेरिडॉन की गोली है, पैरासीटामोल की गोली खाया, बुखार उतर गया, अब लो एक आशी का व्रत रख लिया, चार बुझाएं तो निकली नहीं। अरे मिलेगा उसका फल समय आने पर। भगवान, आपने जैसे ही एकादशी का व्रत रखा, एकदम भगवान से आपका कनेक्शन हो जाएगा, भगवान आपका विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा एक राजा की तरह है, राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, नहीं रखता, राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है संतान की तरह, लेकिन अपनी संतान का विशेष ध्यान रखता है कि नहीं रखता। इसी तरह से भगवान पूरे संसार का पालन कर रहे हैं, पूरा संसार भगवान की संतान है, भगवान सबका पेट पाल रहे हैं, कोई इस बात को माने या ना माने। अगर भगवान चाहे तो कोई खाना नहीं खा सकता, भूख नहीं लगेगी कैसे खा लेगा? भूख कैसे लग रही है? क्योंकि भगवान उसके शरीर में जो अन्न जा रहा है, जो खा रहा है, उसको पचा रहे हैं। अगर वो अपचन हो जाएगा तो खा नहीं पाएगा कुछ भी, चाहे कितना ही धनवान व्यक्ति क्यों ना, है ना। अभी बात करेंगे, आपको भी मौका दूंगा, पहले मैं तो बड़ास निकाल लूं। सो आप प्लीज, हाँ, जो आपने एक बार भी कर लिया एकादशी व्रत, भगवान की एक बार भी आरती कर ली, आप पिछले कई जन्मों के कई पीढ़ियों के आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति करना। तो आप सब प्लीज इसको गंभीरता से लीजिए और एकादशी व्रत का पालन कीजिए, जो भगवान के उत्सव है, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा इत्यादि, उन सब का पालन कीजिए। भगवान को तरह तरह के भोग भगवान को बनाकर लगाइए और इतना आपको लाभ मिलेगा इस जन्म में भी और इस लोक के बाद भी। लाभ ही लाभ है, कुछ नुकसान नहीं है। तो इसको गंभीरता से लीजिए और सब जितना हो सके मिलकर अपने परिवार में सब लोग मिलकर भगवान के दिव्य नामों का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।